क्या जगत, जिसका अर्थ है यहां की क्लेश ही क्लेश कष्ट कष्ट, विश्व के किसी कोने में जाओ हर जगह आपको क्लेश ही क्लेश देखने में आएगा। और इसलिए भगवान गीता में ये भी कहते हैं जो खा रहे मनुष्यम कि यहां कष्ट कष्ट तो हर चीज जो है अस्थाई है। तो गीता का एक विषय यह है ये स्थापित करना कि परमात्मा कौन है। आगे गीता के द्वारा जीवात्मा के विषय में भी ज्ञान प्राप्त होता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान उपदेश देते हैं कि देह में आत्मा है और आत्मा का क्या क्या रूप है, सनातन है। जैसे आपने दूसरे अध्याय के प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण किया, न जायते नित्य वाक्राचन, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ये सोचना कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। प्रभुपाद जी एक समय बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में वो लेक्चर दे रहे थे, जहां उन्होंने पूछा विद्यार्थियों से और अध्यापकों से, उन्होंने कहा कि आपके इतने बड़े महाविद्यालय में कोई ऐसा अंग है विभाग जहां की यह शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहां जाता है, और कोई उत्तर नहीं दे पाया। तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा के विषय में ज्ञान देते हैं और समझाते हैं कि जिस प्रकार हम हमारे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा एक देह को त्याग कर दूसरा देह स्वीकार करती है। और ये निर्णय किया जाता है हमारे कर्मों के द्वारा, कर्मों के आधार पर। फिर गीता द्वारा आपको प्रकृति के विषय में भी ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार ये प्रकृति जो है भगवान के आदेश के अनुसार चलती है। मैं दक्षिण प्रकृति सुई के साथ, तो प्रकृति किसके इशारे से चलती है, परम भगवान के इशारे से। और आगे गीता द्वारा समय की भी चर्चा की जाती है कि समय किस प्रकार हर चीज को नष्ट कर देता है, और समय है भगवान का प्रतिनिधि। और आगे कर्मा के विषय में चर्चा की जाती है। तो यहां हमारे पास छूट है कि हम चाहें तो शास्त्र के शिक्षा के आधार पर चल सकते हैं, चाहें तो शास्त्र के शिक्षा के विरोध का कार्य कर सकते हैं। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण स्वीकार कर रहा हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। और फिर भगवान ने मार्गदर्शन उपदेश देना आरंभ किया। और 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा कि क्या तुम्हारी अज्ञानता अब दूर हो गई है, क्या तुमने ध्यान से यह संदेश सुना है। तो दूसरे शब्दों में जब हम भगवान के संदेश को सुने तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुमने ध्यान से यह संदेश सुना है, क्या तुम्हें ज्ञान था खत्म हो दूर हो गया है। तो भगवान ने पूछा, अर्जुन ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा तुम करो जैसे तुम्हें ठीक लगे। दूसरे शब्दों में जैसे हर देश में हर व्यक्ति को ये छूट रहती है, चाहे तो सरकार के नियमों के आधार पर चले और चाहे तो उसे स्वतंत्र चले, उसी प्रकार हम सबको ये छूट प्राप्त हुई है। चाहे तो हम भगवान की शिक्षा के आधार पर चल सकते हैं या उसके विरोध में कार्य कर सकते हैं। ये ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसलिए भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, राजविद्या राजगुरु। ये जो ज्ञान है ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सब ज्ञानों का राजा है, सबसे प्रसिद्ध ज्ञान है। क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा आपको ये शिक्षा मिलती है कि क्या है आपका कर्तव्य। जैसे हमने कहा आगर में गीता में वैदिक शास्त्र का सार आपको प्राप्त होता है, और वैदिक साहित्य का उद्देश्य क्या है, हमारे में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना, हमें ये समझाना कि यहां क्या कर्तव्य है। मनुष्य जीवन जैसे आप पढ़ते हो बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है और इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और दुरुपयोग नहीं, और इसका हमें उपयोग करना चाहिए शास्त्र की शिक्षा पर आधारित। तो भगवद गीता के द्वारा हमें शिक्षा मिल रही है कि किस प्रकार से हमें जीवन को बिताना चाहिए। भगवद गीता का ये नहीं संदेश कि आप संसार को त्यागो समाज को त्यागो, और भगवद गीता का अर्थ है जो भी आप करो भगवान की खुशी के लिए। आप कई लोगों को मिलते हो जो कहते हैं हम गीता में विश्वास करते हैं, पर गीता के एक संदेश को ले लेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। जैसे कामनीय वाले कार्य से माफ रहे चुकेलाजना, लोग ये श्लोक का उच्चारण अक्सर करते हैं, कहेंगे हाँ गीता में कहा गया है कि तुम अपना कर्तव्य करो, तो हम यही कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, कर रहे हैं। तो आगे भगवान कहते हैं वहां फलेश जो फल है वो मुझे अर्पण करो। भगवान कह रहे हैं उसको नहीं पढ़ेंगे, पहले तो वहीं पढ़ेंगे बाकी दो छोड़ देंगे। भगवान कहते हैं यज करोशी स्नासी यज होशी दासी यज तपस्वी कौन कहता है पुरुष अर्पण। भगवान कहते हैं जो भी तुम कार्य करो यज्ञ करो दान दो तपस्या करो सब करो किसके लिए, मेरी खुशी के लिए। दूसरे शब्दों में भगवान गीता द्वारा ये नहीं कह रहे कि तुम अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को त्यागो, भगवान ये नहीं कह रहे तुम अपने घर को त्यागो बच्चों को त्यागो जंगल में आ जाओ या मंदिर में आ जाओ। भगवान कह रहे हैं हर कार्य करो पर मेरी खुशी के लिए। जैसे अर्जुन युद्ध में लड़ने से इनकार कर रहे थे, भगवान ने क्या कहा तस्मा सर्वेश कलेशु मम मन स्मरण। हे अर्जुन मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो हम सब अज्ञानता में पैदा होते हैं, जैसे हम ये मंत्र का उच्चारण करते हैं ओम अज्ञानति में दर्शक, हम सबका जन्म होता है अज्ञानता में, और फिर भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप स्कूल में जाते हो पाठशाला में जाते हो भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हो। तो इसी प्रकार हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी अनुकूल करना चाहिए, और इस विषय में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि हमें 500 की आयु से ये दिव्य ज्ञान अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आप कृष्ण खानदानों में देखते हो कि 4 साल की उम्र से बच्चों को संडे स्कूल में भेजते हैं बाइबल सीखने के लिए। आप मुसलमानों में देखते हो कि 4-5 साल की आयु से कुरान सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे रशिया में जहां की कट्टर मुस्लिम नहीं है वहां एक हमारा एक भक्त है जो मुसलमान खानदान से, वो तो भक्त बन गया है पर तो उसकी पत्नी और बच्चे नहीं बने। तो मुझे कह रहा था उनके 4 साल का बेटा है और हर इतवार और शनिचरवार वो मस्जिद में जाता है कुरान सीखने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो है संदेश ये प्रहलाद महाराज का था कि छोटी आयु से 4-5 साल की आयु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अनुभव करना आरंभ कर देना चाहिए। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो प्रभा जी ने गांधी जी को पत्र लिखा और कहा आपका बड़ा प्रसिद्ध नाम है सारे विश्व में, आप गीता का प्रचार कीजिए और गीता का ज्ञान भारत के 5 शहरों में देना आरंभ कर करना चाहिए। पर किसी ने उस पत्र का जवाब नहीं दिया। तो गीता का ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे तो हर दृष्टि से सफलता प्राप्त कर सकते हो। उदाहरण के लिए पूरी प्रजा चाहती है आर्थिक उन्नति, हाँ हम चाहते हैं कि लोगों की आवश्यकताएं प्राप्त हो जाए, तो भगवान इस विषय में भी गीता में ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं अन्न भवन्ति भूतानि, अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप क्या करो, यज्ञ करो। यज्ञ करने का अर्थ है धर्म के नियमों का पालन करना। अगर अन्न की प्राप्ति नहीं हो और आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, काम चला आप जी सकोगे? मान लो आपके पास हर प्रकार की टेक्नोलॉजी है, हा? और एक रूप से आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, पर अगर अन्न नहीं पैदा हो तो आप टेक्नोलॉजी से क्या करोगे? आप स्क्रू ड्राइवर वगैरह कंप्यूटर को भोजन के लिए तो नहीं खा सकते, आपको अन्न चाहिए है? आजकल आप देख रहे हो कि अन्न सब्जी फल सब महंगा होते जा रहा है या सस्ता दिन पे दिन? कारण क्या है? कारण यह है कि अन्न का उत्पादन दिन पे दिन घटते जा रहा है और प्रजा बढ़ते जा रही है और पृथ्वी पर इतना पाप का बोझा हो रहा है, इतना पाप किया जा रहा है कि प्रकृति द्वारा जो आवश्यकताएं हैं वो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो रही है और दिन पे दिन और कठिनाई से प्राप्त होंगी। ये मत सोचिए कि ठीक है और ज्यादा भयंकर स्थिति नहीं आएगी, दिन पे दिन और स्थिति बिगड़ते जाएगी। प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहा था कि आप कलयुग में बादल देखोगे ऐसे लगेगा कि बारिश आने वाली है, पर कुछ बारिश नहीं आएगी। क्या कारण है इसका? पृथ्वी पर शिवपाप का बोझा बढ़ते जा रहा है। तो गीता का क्या संदेश है? गीता का संदेश अगर हमारे राजनीतिक नेता अपनाएं तो समाज की समस्या हल हो जाएगी। गीता में भगवान कह रहे हैं बड़े स्पष्ट रूप से, आज अगर आपको अच्छी फसल चाहिए, अन्न चाहिए, अनेक सुविधाएं चाहिए तो धर्म के नियमों का पालन करो, यज्ञ करो। यज्ञ बिना ये जीवन अधूरा माना जाता है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उन्होंने कहा स्पष्ट सहाय यज्ञ प्रजा सृष्टि, अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो यज्ञ किया का पालन आवश्यक है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है भागवतम के सातवें स्कंध में नते विदुम स्वत गति विष्णु, और लोग ये नहीं जानते कि असली सुख खुशी कैसे प्राप्त हो सकती है, पर गीता में भगवान उपाय दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर असली सुख चाहिए तो मेरी शरण में आओ। तो गीता का संदेश का बड़ा खास महत्वपूर्ण गीता का संदेश की बहुत आवश्यकता है आज के वातावरण में। गीता के विषय में, गीता के इतिहास के विषय में चौथे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? इमाम परंपरा प्रवक्ता में मान जानते, ये ज्ञान कैसे आ रहा था? गुरु परंपरा द्वारा, राज ऋषि द्वारा। दूसरे शब्दों में प्राचीन समय में जो नेता थे, राजा थे, उन सब ने गीता का अध्ययन किया था। गीता का संदेश आ रहा था राज ऋषियों के द्वारा, पर आज के वातावरण में आप देखते हो किसी विश्व के किसी देश में, खासकर के हिंदुस्तान में, हमारे नेता गीता के आधार पर शासन कर रहे हैं। आपको देखने में आता है? नहीं आता। पर अगर गीता के संदेश को अपनाए तो हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। आज हम कहते हैं लोगों का चरित्र नहीं है, नेता का चरित्र नहीं है, आचरण नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि गीता का संदेश का अध्ययन वो नहीं कर रहे। गीता के संदेश का अध्ययन करेंगे तो ये समझ आएंगे ये शरीर अच्छी अवस्थाओं से गुजर कर जाएगा, जन्म और अंत में मृत्यु, और आत्मा है सनातन। आज जो पापी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, चिंता के बाद कमा लो, जितनी बेईमानी करनी कर लो, भविष्य का किसने देखा। आप किसी भौतिकवादी से गीता के दूसरे अध्याय की चर्चा करो, वो कहेगा इम्पॉसिबल, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास की आत्मा है, प्रमाण है चेतना। तो वो कहेंगे नहीं, स्वामी जी सब खत्म हो जाता है मृत्यु के साथ, पर गीता का क्या उपदेश है, नहीं सब खत्म नहीं होता मृत्यु के साथ, आपकी आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह स्वीकार करती है। कुछ ऐसे कि भागवतम के तीसरे स्कंध में कहा गया है, कर्मण देव नहीं जंतु देव को पते, हमारे हर कार्य के अनेक साक्षी बनते हैं और कर्मों के अनुसार अगला देह प्राप्त होता है। पर अज्ञानता के कारण हम क्या सोचते हैं कि सब समाप्त हो जाएगा इस शरीर के त्यागने से, ये है अज्ञानता। तो अज्ञानता के कारण हम ये नहीं समझ पाते क्या कर्तव्य होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए गीता के संदेश का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि हमें गीता का अध्ययन रोज करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त है, पांच देवों के प्रभु, जिनको कोढ़ की बीमारी थी, बहुत गहरी कोढ़ की बीमारी, पूरा शरीर भरा हुआ था पस के साथ, और इतने दयालु थे वासुदेव विप्र कि जब उनके शरीर से कोई कीड़ा नीचे भी गिरता था उसे उठाकर शरीर के साथ जोड़ देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हें गले लगाया, जैसे गले लगाया तो अगर बदसूरत शरीर खूबसूरत बन गया और उनके मन में यह भावना भय था कि जो कहीं वो घमंडी नहीं बन जाए। पहले तो उन्होंने पद्म भगवान का गुणगान किया भागवतम के दसवें स्कंध के श्लोकों के द्वारा, जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था। जब वो अपने स्थान में लौटे और देखा उन्होंने कि कुटिया की वजह महल बन गया है उधर, पर फिर वासुदेव विप्र ने महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि पहले मैं इतना बदसूरत था, इतनी गहरी बीमारी थी, कोई मेरे निकट भी नहीं आता था, अब आपकी दया से मेरा शरीर इतना खूबसूरत बन गया है, बीमारी समाप्त हो गई है, मुझे ये शिक्षा दीजिए कि कैसे मेरे में विनम्रता का भाव रहेगा, क्योंकि भक्त के मन में सदा ये भाव रहता है कि विनम्रता के साथ ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अगर हम गीता को भी समझना चाहें हमारा विनम्रता का भाव होना चाहिए, चैलेंजिंग भाव नहीं। कई लोग गीता पढ़ते हैं दुख निकालने के लिए, पर हमें गीता पढ़नी चाहिए भगवान के शरणागत होने के लिए। तो महाप्रभु ने कहा छह हरे कृष्ण, रोज हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो और गीता भागवत का अध्ययन करो, और उच्चारण के साथ हरिनाम की महिमा का प्रचार करो और गीता भागवत का अध्ययन और प्रचार, इस प्रकार तुम हमेशा तुम्हारे में विनम्रता का भाव रहेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जिस प्रकार वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ चैतन्य महाप्रभु जी की असीम कृपा से, उसी प्रकार हम सबका उद्धार हुआ है प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से कम हमें वो ज्ञान वो शिक्षा तो प्राप्त हुई है जिसके द्वारा भगवान के शरणागत हो सकते हो। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हरि नाम का उच्चारण और गीता भगवत का प्रचार। तो इसलिए आप भक्तों में हमेशा ये संदेश दिया जाता है कि हमें प्रचार करना चाहिए। क्यों? कि लोग अज्ञानता में है। भगवतम के भगवत गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कई लोग अज्ञानता में जन्म लेते हैं और भक्तों द्वारा दिव्य संदेश सुनकर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए, अगर हम आप सबसे पूछें कि आप कैसे जुड़े हो कृष्ण भक्ति के साथ, एक समय था जब श्रील प्रभुपाद जी आपके दिल्ली शहर में प्रचार कर रहे थे, वृंदावन में निवास कर रहे थे, थर्ड क्लास डब्बे में आते थे वृंदावन मथुरा से दिल्ली, एक भक्त भी नहीं था। आज हजारों भक्त हैं दिल्ली में और विश्व के हर कोने में। ये कैसे संभव हुआ है? ये संभव हुआ है दो कारणवश। एक है ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा, दूसरा है भक्तों के प्रचार के द्वारा। भगवद्गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हम अज्ञानता में जन्म लेते हैं पर किसी भक्त द्वारा दिव्य संदेश सुनकर जीवन को सुधारने का निर्णय ले लेते हैं। तो आप सबका अनुभव होगा कि आप कई बार दूसरों को प्रचार करते हो, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। और आपको भी किसी ने प्रचार किया होगा कि आप भी जुड़े कृष्ण भक्ति के साथ। तो इसलिए प्रचार की जो सेवा है, इस पर खास बल दिया गया है भगवत गीता के संदेश में। इसी विषय पर 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, वो प्रसिद्ध श्लोक में, याइना परमं गुह्यम्। सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना तो हुआ है ना होगा। कई बार भक्त पूछते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने के? क्योंकि हमें आदत है पौधिक जीवन में शॉर्टकट, छोटा रास्ता ढूंढने के। तो शॉर्टकट है वो क्या है? प्रचार। भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता के 18वें अध्याय में, गीता का सार प्राप्त हो रहा है और भगवान कह रहे हैं क्या? सब भक्तों में सारे भक्त भगवान के प्रिय हैं। जो भगवान के लिए भोजन बनाता है, जो भगवान की आरती करता है, जो घर में जो प्रचार करता है, अनेक प्रकार के सेवाएं हैं जिनके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। पर इन सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो प्रचार करता है। और भगवान आगे प्रचार की सेवा पर बल देते हुए आगे कहते हैं, इससे ज्यादा प्रिय ना कोई कभी इतिहास में हुआ है ना होगा। तो आप इसे अंदाजा लगाओ कि जो प्रचार की सेवा है कितनी महत्वपूर्ण है। तो गीता का जो संदेश है उसका निर्णय यह है भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ क्या है? भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान के आदेश के अनुसार जीवन का उपयोग करना, चाहे आप ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो या संन्यास हो। चार आश्रम है, चार वर्ण है, पर सबका भाव क्या होना चाहिए? कि भगवान के संदेश के अनुसार जीवन को बिताएं। भगवान गीता में कहते हैं चतुर वर्ण माया श्रेष्ठ, तो वो स्वीकार करते हैं चार वर्ण चार आश्रम है। हम सबका लक्ष्य यह होना चाहिए कि हर कार्य करे भगवान की खुशी के लिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए उन्होंने भगवान के शरणागत के 6 विभागों का वर्णन किया, जिनमें सबसे पहला आदेश क्या था? जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे क्या करो, और जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे। और इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, हे मेरे प्रिय मित्र, भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, तो कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। दूसरे शब्दों में भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए कब कई बार हमें प्रतिकूल कार्य को त्यागना पड़ता है, त्यागो। और गीता के संदेश को ठीक समझने के लिए हमें किसी भक्त के माध्यम से इसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान भगवद गीता के चौथे अध्याय में गीता का इतिहास देते हैं। भगवान ने समझाया किस प्रकार उन्होंने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता, जिससे ज्ञान मनु को आया और फिर आगे किसे ईश्वर को। पर समय के साथ ये ज्ञान खो गया था, तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं। क्यों? अर्जुन सन्यासी थे, हाँ, ब्रह्मचारी नहीं, क्या थे? गृहस्थ थे। पर उनमें एक खास तालीम थी, भगवान के मित्र थे और भक्त थे। इसलिए भगवान ने कहा तुम इस दिव्य ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे। तो गीता का संदेश हमें स्वीकार करना चाहिए किसी भक्त के माध्यम से। और जब से भगवद गीता यथारूप प्रकाशित हुई है, लाखों लोग सारे विश्व में जुड़े हैं कृष्ण भक्ति के साथ, लाखों लोग। क्यों? क्योंकि ये जो अनुवाद है किनके द्वारा किया गया है? भगवान के भक्त के द्वारा। तो गीता का संदेश समझने के लिए नम्रता का भाव होना चाहिए और किसी भक्त के माध्यम से ये स्वीकार करना चाहिए। और ये नहीं हम एक श्लोक का संदेश स्वीकार करेंगे और दूसरे का नहीं। गीता का अंत का संदेश, गीता के संदेश का असली अर्थ क्या है कि हमें भक्ति योग में जुड़ना चाहिए और भगवान के शरणागत होना चाहिए। मन द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन, भगवान की सेवा और हर कार्य करना चाहिए भगवान की शिक्षा के अनुसार। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान युवाओं बताते हैं यज्ञों में मैं जापा हूं। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हम करते हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करते हैं, इसका भी वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में। और भगवद गीता में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं तीन चीजों को कभी नहीं त्यागो। क्या है वो? यज्ञ, दाना, तपस्या। तो इस कलियुग का जो यज्ञ का साधन है यह हरि नाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे यह हरि नाम लेकर, अपने साथ भगवतम के ग्रंथ ले गए थे पतन स्कंद के और एक मृदंग, और हरि नाम के माध्यम से उन्होंने इस संस्था की स्थापना की। क्योंकि शास्त्र का निर्णय है हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम लो न सेव न सेव न सेव देवता। हरि के नाम हरि के नाम हरि के नाम शास्त्र में कहा गया है कि इस कलयुग में हरि के नाम के उच्चारण से वही लाभ प्राप्त हो सकता है जो दूसरे युगों में तपस्या यज्ञ इत्यादि द्वारा प्राप्त हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं तीन चीजों को मत त्यागो, यज्ञ, दान और तपस्या। तो ये है यज्ञ का साधन क्या? या हरि नाम का उच्चारण। दाना, जो दान सबसे ऊंचा दान क्या है? ज्ञान का दान। और भक्त जो प्रचार में जाते हैं वो समाज के लिए सबसे ऊंचा कार्य कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते थे दिस इज द हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। और समाज की सेवा अनेक रूपों से कर सकते हो, हॉस्पिटल बना सकते हो, पाठशाला खोल सकते हो, कैंसर का ऑपरेशन करवा सकते हो, पर सबसे ऊंचा दान है ये ज्ञान देना कि परम भगवान के शरणागत होना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और माध्यम है भक्ति होगी। ये है सबसे ऊंचा दान। फिर तपस्या, तपस्या का ये अर्थ नहीं कि आप कुछ खाओ नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्रयम यो मे भक्ति प्रयोजति, प्रेम और भक्ति के साथ मुझे जल भी अर्पण करो मैं स्वीकार करूंगा। भगवान तीर्थ अध्याय में कहते हैं जो भोग लगाए बिना खाए क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। तो जो खाए भोग लगाओ। तो ये नहीं तपस्या का कि आप भोजन दिखाओ या ध्रुव महाराज की नाटक करो, तपस्या का अर्थ है जो कि जो कार्य प्रतिकूल है भक्ति के लिए उसे त्याग दो और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। ये होना चाहिए हमारा भाव। तो अगर हमें किसी प्रकार की तपस्या भी उठानी पड़े और देखा जाए ध्यान से भौतिक जीवन में भी तपस्या को उठानी पड़ती है जबरदस्ती। किसी भारत के किसी शहर में रहो वो भी एक भारी तपस्या है। और भगवान कहते हैं तपस्या उठाओ इस भक्ति के लिए। दूसरे शब्दों में जो कार्य प्रतिकूल हैं, जो बुरी आदतें हैं उन्हें त्याग दो। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। इससे पहले भगवान तीन गुणों क्या की चर्चा कर बैठे हैं, सतगुण राजगुण तमोगुण। सतगुण के जो व्यक्ति सतगुण के प्रभाव में है उसका क्या लक्षण है, उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, वो बुरे कामों से बचना चाहता है और वो समझ पाता है क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। और उसमें जब भी थोड़ी भावना रहती है भौतिक सुख की व्यक्ति की। फिर है रजोगुण। रजोगुण का क्या लक्षण है, बहुत परिश्रम करना। और इसका जो नतीजा है उसका लाभ आप उठाना चाहते हो खुद आप, और आप सोचते हो ये मेरे नतीजे का फल है, ये तो मुझे भोगना चाहिए, मैं साधु को क्यों दान में दूं। तो तमगुण के प्रभाव में व्यक्ति आलसी रहता है और किसी प्रकार की रुचि नहीं है आध्यात्मिकता में। तो सतगुण जो है रजोगुण और तमगुण से ज्यादा अच्छा। पर सतगुण के ऊपर भी एक और है शुद्ध सत्व, जहां की आप शुद्ध भक्ति के भाव में निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर सकते हो। भगवान की सेवा साकाम भाव से भी कर सकते हो, निष्काम भाव से भी। भगवान स्वयं सातवें अध्याय में कहते हैं चार स्थितियों में व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विधा बजानते कौन है चार प्रकार के व्यक्ति। एक जैसे धन चाहिए, तो धन तो आप लोग हम सबको चाहिए, वहां आप तो लगता है ठीक जगह पहुंच गए हो। दूसरा जिज्ञासु, तीसरा रोगी पीड़ित, चौथा ज्ञानी ज्ञान प्रधान। तो ये जो पहले तीन हैं ये सकाम भाव के हैं, भगवान की शरण में आ रहे हैं तो कुछ इच्छा है, मैं बीमार हूं रोगी हूं पीड़ित हूं। भगवान कहते हैं चाहे तुम सकाम भाव से आओ मेरे पास आओ। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं जो कम बुद्धि के लोग हैं तो देवताओं के पास जाते हैं, तो जो वह देवता दे रहे हैं वो असल में मैं दे रहा हूं। देवता दे पाते हैं मेरे कारण, तो मेरी शरण में आओ। भगवान बार बार हमें ये निमंत्रण दे रहे हैं मेरी शरण में आओ। तो और भगवान की शरण में आएंगे तो भगवान क्या कहते हैं, बिना शंका के तो मेरे धाम आओगे। तो देवताओं की पूजा कर सकते हो पर ज्यादा बेहतर है और सीधा भगवान की पूजा करो। और इस विषय में भगवतम के 14 स्कंद में नारद मुनि प्रचेतक को उपदेश देते हुए कहते हैं जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी डालो तो पूरे वृक्ष में उसका प्रभाव आ जाता है, या पेट में भोजन डालो तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव आ जाता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्ति द्वारा आप 33 करोड़ देवता देवियों के प्रति जो बाहर है वो सबको चुका रहे हो। तो तीन रोगी हैं, जो जिज्ञासु है जिसे धन चाहिए, ये भगवान के शरण में आ रहे हैं साकाम भाव से। पर भगवान कहते हैं आओ मेरी शरण में। अब जरूर महाराज की कथा पढ़ते हो कि किस प्रकार वो आए थे साकाम भाव से, पर भगवान के चिंतन द्वारा इतना आनंद आया कि जब भगवान ने उन्हें हर प्रकार की सुविधा देने को तैयार थे, ध्रुव ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, मैं निकला था टूटे शीशे के खोज में, अब मुझे असली हीरा प्राप्त हो गया। वो असली हीरा है शुद्ध भक्ति। तो भगवद गीता का निर्णय है शुद्ध भक्ति, और प्रचार के द्वारा आप लोगों को इस मार्ग में जोड़ सकते हो। और गीता के छठे अध्याय का विषय क्या है? ध्यान योग, जहां भगवान कह रहे हैं मन को बंधु बनाओ शत्रु नहीं। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए आध्यात्मिक जीवन सरल हो जाता है, वो व्यक्ति किसी स्थिति में विचलित नहीं होता। और किसी ने अगर मन को वश में नहीं किया तो आध्यात्मिक परिवर्तन कठिन हो जाता है। प्रभुपाद जी ने एक समय एक कथा सुनाई कि एक समय एक ब्राह्मण था, उसके घर के सामने एक वैश्य का मकान था। ये ब्राह्मण सारा दिन भगवद गीता को अपने सामने रखता था और दिखावा ये था कि वो गीता का अध्ययन कर रहा है, पर मन में सोचते रहता था वो वैश्य का धंधा, अभी कौन अंदर जा रहा है, कौन वैश्य का ग्राहक बन रहा है, क्या हो रहा है। और जो वैश्य थी वो देखती थी ब्राह्मण को, ब्राह्मण के हाथ में भगवद गीता है, और वो सोचती थी दिन रात कहां मैं पाप के धंधे में फंस गई हूं, मेरा भी एक जीवन उस ब्राह्मण जैसे प्राप्त हो तो मैं सारा दिन भगवद गीता पढ़ सकूं। और ये जो ब्राह्मण था पखंडी ब्राह्मण था, गीता सामने रखा था, वो सोच रहा था वैश्य के धंधे के बारे में। तो उस इलाके में आग लग गई जैसे दोनों मर गए। तो विष्णु तो आए वैश्य को लेने, तो ये वैश्य हालांकि पाप के धंधे में थी पर मन द्वारा यही इच्छा रख रही थी कि मेरा जन्म इस ब्राह्मण जैसे हो कि मैं दिन रात भगवद गीता को पढ़ सकूं। और यमदूत गए ब्राह्मण को पकड़ के, तो जब यमदूत आए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण ने कहा अरे तुम तो गलत एड्रेस पर आ गए, तुम्हें तो उस वैश्य के पास जाने से, मैं तो सारा दिन भगवद गीता पढ़ता था। तो फिर यहां पर तुम्हें समझाना पड़ा कि तुम पखंड कर रहे थे गीता पढ़ने का, पर मन में क्या सोच रहे थे वैश्य के भोग विलास का कार्य, तुम चलो सजा भुगतने के लिए। तो इसलिए गीता में बार बार भगवान कह रहे हैं अनेक श्लोकों के द्वारा मन को बंधु बनाओ। मन बंधु कब बनेगा? जब मन द्वारा भगवान को उपदेश भगवान के लीलाओं के इत्यादि का हम स्मरण करें। तो आप सब जो यहां जुड़े हो आवश्यक ही भक्त हो, आपने भक्तियों के मार्ग को स्वीकार किया है इसलिए आप जुड़े हो, पर हमें ये संदेश आगे भी ले जाना है। आप सब की आंखें खुली हैं भगवद गीता के संदेश के द्वारा। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने गीता के संदेश को गीता का अनुवाद किया था। ये जो गीता यतनरूप का अनुवाद हम पढ़ते हैं ये गीता का दूसरा अनुवाद है। प्रभुपाद जी ने पहले गीता का अनुवाद किया था, उस समय उनके पास कोई सुविधा नहीं थी प्रकाशित करने के लिए। और जब लगा कि शायद कोई व्यक्ति सहयोग दे दे तो प्रभुपाद जी वापस घर में लौटे, गीता की कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट दिखाने के लिए। उन्हें पता लगा कि वो मैन्युस्क्रिप्ट किसी ने बेच दी है घर में रद्दी के रूप में। तो प्रभुपाद जी को पूरी गीता फिर से अनुवाद करना पड़ा। क्यों? प्रभुपाद जी ने गीता के संदेश को इतना बल क्यों दिया? क्यों? गीता में है जैसे हमने कहा पूरे वैदिक साहित्य का सार, और अगर हम गीता समझ लें तो दूसरे ग्रंथों को समझना ज्यादा सरल होगा। प्रभुपाद जी कहते थे Gita is high school, Bhagavatam is college, Chaitanya Charitamrita is postgraduate. तो इससे हम सब भक्तों से पहले क्या कहते हैं, गीता पढ़ो और ध्यान से पढ़ो और रोज पढ़ो, कम से कम एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक रोज पढ़ो, और पढ़ो तो तात्पर्य के साथ, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान का संदेश क्या है। और प्रभुपाद जी जब गीता का अनुवाद कर रहे थे तो अपने सामने उन्होंने बालादेव विद्याभूषण, क्योंकि महान संत थे, उनके तात्पर्य को सामने रखा था और उनके भावों जो अवश्य भाव थे उनको प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है। तो आप सब ये निर्णय लीजिएगा कि आप भगवद गीता को रोज पढ़ोगे। आप में से कितने भक्त जो भगवद गीता रोज पढ़ते हो? अगर मैं पूछूं कितने भक्त हो जो अखबार रोज पढ़ते हो, सब हाथ उठाएंगे। तो प्रयास करो गीता को रोज पढ़ने के लिए। और जिस प्रकार हमारा जीवन सुखी बन रहा है कृष्ण भक्ति में जुड़कर, हमारा प्रयास रहना चाहिए दूसरों को सुखी बनाने के लिए भी। सच है? और वो कैसे संभव होगा? किस माध्यम के द्वारा? प्रचार के द्वारा। तो प्रचार के लिए भी हमें उत्साहित होना चाहिए। और जैसे आप जानते हो हर साल गीता जयंती के उपलक्ष्य इसका के भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में ग्रंथों का वितरण करने के लिए। क्यों? क्योंकि ग्रंथों में है ज्ञान। जैसे हमारा उद्धार हुआ है, जैसे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी प्रकार हमें दूसरों को भी सुखी बनाना है, हम दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं, इसलिए इस प्रचार की आवश्यकता। प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैंने तो सीख लिया है किस प्रकार आपके चिंतागत होना, मुझे चिंता है उन व्यक्तियों की जो कि आपको भूल रहे हैं। तो आज लगभग सभी भूल रहे हैं भगवान को, और सबको याद दिलाना किसका कर्तव्य बनता है? किसका? आप सबका। तो आप सब उत्साह से प्रचार कीजिए। आप में से कई भक्त मेरे ख्याल से ग्रंथों के वितरण के मैराथन में जुड़े हो। आप में से कितने भक्त इस समय भगवद गीता मैराथन में जुड़े हुए हो? लगभग सब। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ये कठिन सेवा कर रहे हो। कठिन सेवा किस लिए? क्योंकि जब आप प्रचार करने जाते हो ये थोड़ी कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा, कई साथ देंगे, कई आपकी बेइज्जती भी करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछली दफा सुनाया था नित्यानंदन हरिदास ठाकुर की कथा, जब नित्यानंदन हरिदास ठाकुर घर घर जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार, कई घरों में तो उनका स्वागत हुआ, तो कई स्थानों में उनकी बेइज्जती भी हुई। लोगों ने कहा तुम तो जासूस हो, सन्यासी के रूप में आ गए हो, देखने के लिए हमारे घर में क्या है, तो चोरी करने आओगे। और जब लोगों ने भगवान नित्यानंदा हरिदास ठाकुर को जासूस बुला रहे थे तो वो हंसते थे। तो अगर नित्यानंदा हरिदास ठाकुर को कोई जासूस बुला सकता है, हमें तो उसकी तुलना में जूते पड़ने चाहिए। तो अगर कोई आपके बेइज्जती भी करे तो आप यही सोचना जब भगवान नित्यानंदा को और हरिदास को लोग जासूस कह सकते, कई घरों में वो जाते थे, लोग दरवाजा भी नहीं खोलते थे, कहते थे तुम वो पागल निमाए के प्रभाव में आयो, हम तुम्हारे से बात नहीं करना चाहते। तो और ये स्थिति कब थी? 500 साल पूर्व। तभी तो कलयुग और आगे बढ़ गया। तो आप सबसे निवेदन है कि आप उत्साह के साथ मैराथन की सेवा कीजिएगा। रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि हमें उत्साहित होना चाहिए भक्ति के कार्य में, और क्यों नहीं है कि नहीं, आखिर आप किसकी सेवा कर रहे हो? परम भगवान की सेवा कर रहे हो। तो इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि कोई एक श्लोक भी पढ़ लेगा तो उनका जीवन सुधर जाएगा। कुछ दिन पहले हमने एक कथा पढ़ी कि एक व्यक्ति जो भक्त बना है उसने गीता खरीदी थी 20 साल पहले उसने गीता खरीदी थी और 20 साल के लिए उसने गीता खोली भी नहीं। फिर एक दिन कुछ दुर्घटना के कारण उसने गीता पढ़ना शुरू किया और जैसे गीता पढ़ते गया उसे ऐसे लगा कि ये भगवान जो संदेश दे रहे हैं उसके लिए, उसके लाभ के लिए, स्पष्ट उसके लिए। और फिर गीता को संदेश को पढ़ा और भक्त बन गया। तो इसी प्रकार हजारों लोग सारे विश्व में जुड़े हैं गीता के अध्ययन के द्वारा, और अध्ययन कैसे संभव हुआ क्योंकि आप जैसे भक्त ने प्रयास किया और घर घर गए प्रचार करने के लिए। तो सारे विश्व में हमारे भक्त घर घर जाते हैं भगवान का संदेश आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सब भक्त जो जुड़े हो मैराथन में, आप सब श्री प्रभुपाद जी और महानाचार्यों की शुभकामनाएं स्वीकार कीजिएगा और कृपा करके इस सेवा में जुड़े रहो उत्साह के साथ, क्योंकि ये जो सेवा है पूरे समाज के उद्धार के लिए है। और हम सबको ये निर्णय करना चाहे कि हमें भगवद गीता के संदेश को यथारूप स्वीकार करना है, जिसका अर्थ है कि वही कार्य करना है जो भगवान के आदेश के अनुसार है। और अगर कोई कार्य उनके आदेश के विरोध का है, विपरीत है, तो उसे क्या करना है, जानना है। और चाहे कितनी भी कठिनाई हो, जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। और भक्ति योग का अर्थ है भगवान की इच्छा के अनुसार हर कार्य करना। और भगवान ने कहा जप करो, ये सबसे सरल माध्यम है इस कलयुग में भगवान के भक्त बनने के लिए। और भगवान के भक्त बनोगे तो ही गीता को समझ पाओगे। अगर आप गीता को स्कॉलरली एंगल से समझना चाहते हो तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसके लिए विनम्रता का भाव, भक्ति का भाव आवश्यक है अगर आप गीता को समझना चाहते हो। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण। एक बार जोरदार कटर दौड़ी से भगवान कृष्ण साहू महाराज की। तो महाराज ने अपने संदेश में बताया गीता जयंती के सत्संग में कि हम सबको प्रतिदिन गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। तो कहते हैं आप लोग प्रतिदिन गीता पढ़ने का संकल्प लेते हैं। बहुत धन्यवाद।
सबका वीडियो कैमरा से फोटो खींचिए।
कैमरा ऑलरेडी
आप सबको पता है आपके सारे आप दर्शन मेरे रोज दे सकते हो।
तो महाराज जी को आश्वासन देने का पूरा प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन गीता का पाठ करें। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि गीता मैराथन में जितने उत्साह से आप सब भक्तों ने भाग लिया, इसलिए आप सब भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और सबको अनुभव होगा कि जब हम इस गीता मैराथन में जुड़ते हैं, गीता का वितरण करते हैं, तो हम साक्षात प्रभुपाद जी कृपा का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि सही बोला महाराज जी ने कि साधना की योजना बनाई है और ये अपने आप एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि एक ही महीने में एक ही पुस्तक एक ही शहर में इतनी बड़ी मात्रा में अपने आप में देखा जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए इसका नाम। लेकिन अभी योजना है 7 लाख की और आखिर में लगभग 6 या 7 दिन रह गए हैं और हम अपने इस लक्ष्य से थोड़ी दूर हैं। तो उत्साह बनाए रखें और अगले 5-6 दिन और उत्साह से हम इसका वितरण करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभुपाद जी की कृपा से और गुरुराज की कृपा से हमें 7 लाख के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।
कई बार जब आप प्रचार में जाते हो कोई ग्रंथ नहीं लेना चाहता, तो जब वो देखता है इन भक्तों में इतना उत्साह है, इतना गहरा विश्वास है, तो वो कहते हैं हाँ ये भक्त उत्साहित है तो जरूर अच्छा कारण होगा, मुझे ग्रंथ लेने दो। ये सारे विश्व में ये अनुभव है। हमारे रशिया अमेरिका में कई भक्त मुझे कहते हैं कि हमने किताब ली इंथ्यूजियाज्म ऑफ द डिवोटीज। अगर हम जाएंगे और कहेंगे भगवत गीता यथा रूप चाहिए तो ये लोग